आरव की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी थी और साथ ही अब वो किसी भी खतरे से बाहर था। कबीर अब तक कोई एक्शन नहीं ले रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि आरव अब ठीक है, वो तुरंत एक्टिव हो गया। उसने पहले समझौते के लिए इजाज खान से बात करने के लिए मीटिंग रखी। अब्बास कबीर के इलाजों से अनजान नहीं था, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आया। कबीर भी मीटिंग में नहीं गया था और हॉस्पिटल में अब्बास पर नज़र रख रहा था। अयान इसमें उसका पूरा साथ दे रहा था। कबीर ने अपने खास आदमियों को वार्ड बॉय के कपड़े पहनकर हॉस्पिटल में बुला लिया था। रात के लगभग 2 बजे के करीब कबीर ने अपने सारे आदमियों को कॉल कर लिया और उनसे कहा, फैज़ खान के रूम के बाहर की सिक्योरिटी में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट किए गए हैं, वो अब ड्यूटी एक्सचेंज करने वाले हैं। इस बीच हमें अब्बास को बाहर निकालने का मौका मिल जाएगा। हमें फैज़ के सामने उसे बाहर नहीं बुलाना है। मैंने फुटेज में देखा था कि वो लोग लगभग इसी वक्त ड्यूटी एक्सचेंज करते हैं। दिन में 4 बार गार्ड्स अपनी ड्यूटी बदलते हैं ताकि उन्हें आराम करने का मौका मिल जाए, उसके एक आदमी ने जवाब दिया। कबीर ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ जानता हूँ, और वो टाइम लगभग इसी वक्त का होता है। गार्ड्स ड्यूटी चेंज करने के लिए आएंगे और अब्बास उन्हें देखने बाहर आएगा। वार्ड बॉय को कुछ प्रिस्क्रिप्शन के साथ अब्बास के पास भेजना और बोलना कि फैज़ के लिए ये दवाइयाँ अर्जेंट में चाहिए, हॉस्पिटल में नहीं है और कल सुबह ही फैज़ को ये दवाइयाँ देनी होगी। उसे सब कुछ समझाकर कबीर सतर्क हो गया। ड्यूटी एक्सचेंज करने के लिए फैज़ के रूम के बाहर लगभग 4 गार्ड आए थे। अब्बास उन्हें देख रहा था, तभी एक आदमी वार्ड बॉय की ड्रेस में अब्बास के पास गया और उसे एक पर्ची देते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है कि कल सुबह तक ये दवाई होनी ज़रूरी है, हॉस्पिटल के मेडिकल में ये अवेलेबल नहीं है। आसपास के हॉस्पिटल में भी बात की तो फ़िलहाल के लिए अरेंज नहीं हो पाएगी। अगर आपकी जान पहचान है तो क्या आप ये दवाइयाँ अर्जेंटली मंगवा देंगे? इसकी ज़रूरत नहीं है, अब्बास ने रूखे तरीके से जवाब दिया और वो अंदर जाने लगा। अंदर जाते वक्त वो खुद से ही बड़बड़ाया, पता नहीं क्या सर्कस लगा रखा है, वैसे भी सर यान की दवाइयाँ नहीं लेते हैं तो मैं क्यों आधी रात को दवाइयाँ लेने बाहर जाऊँ? अब्बास अंदर कुछ ही कदम पहुँचा होगा तभी पीछे से वार्ड बॉय ने कहा, ठीक है फिर मैं बोल देता हूँ कि आप उन्हें दवाइयाँ लाकर देने से मना कर रहे हैं, आपको तो पता भी नहीं ये दवाइयाँ उनके लिए इतनी ज़रूरी है, इसी के सुबह डोज देने की वजह से वो जल्दी ठीक हो पाएंगे, एक भी डोज मिस हुआ तो सारा ट्रीटमेंट वेस्ट हो जाएगा और उनमें 1% भी इम्प्रूवमेंट हुई है तो वो वहीं पर रुक जाएगी। उस आदमी की बात सुनकर अब्बास के कदम वहीं रुक गए। उसने खुद देखा था कि फैज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है, अब वो उसकी दी हुई आयुर्वेदिक दवाइयों की वजह से है या डॉक्टर के ट्रीटमेंट की वजह से था, इस बात को लेकर वो खुद भी श्योर नहीं था। अब्बास ने इरिटेट होकर अपनी आंखें घुमाई और वापस उसकी तरफ पलटा। उसने वार्ड बॉय के हाथ से पर्ची लेते हुए कहा, ठीक है मैं किसी से बात करके अरेंज करवाता हूँ, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और एक दवाई तक अरेंज नहीं करवा पा रहे हो। अब्बास उस पेपर के साथ दूसरी तरफ आया और किसी को कॉल करने लगा। अब्बास का कॉल कनेक्ट भी नहीं हुआ था कि तभी पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा दिया। वो हाथ पैर मारकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस किसी ने भी उसका मुंह दबाया था उसके रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगा था और अब्बास की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। वो कबीर था। अब्बास के बेहोश होते ही वो अपने आदमियों के साथ घसीट कर उसे उसकी ही कार में ले गया। चलो तैयार हो जाओ अब्बास अहमद, आसान मौत तो तुम्हें मिलने वाली नहीं, ठीक उसी तरह से एक्सीडेंट होगा जैसे कल आरव सर का हुआ था, बस फर्क इतना था कि उन्हें कुछ नहीं हुआ था और तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं, कबीर ने धीरे से कहा और फिर अब्बास को गाड़ी में लेकर चला गया। कबीर ने सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से अच्छे से प्लान किया था। उसने जिस वार्ड बॉय को भेजा था वो हॉस्पिटल में ही काम करता था और अयान ने ही उसे प्रिस्क्रिप्शन दिया था। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हुआ था, इसलिए उसमें लिखी दवाइयाँ भी असली थीं और वो फैज़ को दी जा रही थीं। फुटेज वैसे भी प्रिंस मैनेज कर रहा था, अगर कोई अब्बास को बाहर जाता भी तो उसे ये लगता कि अब्बास फैज़ के लिए दवाइयाँ लेने बाहर गया है। कबीर ने अब्बास को उसी की गाड़ी में बिठाया था और गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उस गाड़ी के ब्रेक्स भी नहीं थे, अब्बास के बचने के कोई चांस नहीं थे। एक सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद कबीर गाड़ी से कूद गया। उसने अपने किसी आदमी को बड़े से ट्रक के साथ भेजा था और गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से वो गाड़ी ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी टकराते ही ब्लास्ट हो गई और एक जोरदार धमाका हुआ। कबीर ने बहुत जल्दी आरव का बदला ले लिया था, जैसा कि माफिया की दुनिया में होता था, किसी को संभलने का मौका ही न देना और उस पर तुरंत वार करना। अब्बास अहमद गाड़ी में बैठा था और कबीर उसे दूर से देख रहा था। जलती हुई गाड़ी को देखकर कबीर ने कहा, काश तुम्हें मारने से पहले मैं तुमसे बात कर पाता, लेकिन तुम तो ये डिजर्व ही नहीं करते हो। जो भी हो, तुम्हारे जाने के बाद वो फैज़ खान अकेले पड़ जाएगा, यही उसकी सजा है। इतनी आसानी से मैं उसे ठीक नहीं होने दूंगा। इसके बाद कबीर वहां से जा चुका था। वैसे भी वो श्योर था कि अब्बास मर चुका है। अगली सुबह फैज़ नींद से जागा तो उसके पास में अब्बास नहीं था। उसे लगा कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया होगा। सिक्योरिटी गार्ड ने उसके लिए टीवी ऑन किया और टीवी में आ रही न्यूज़ को देखकर फैज़ हैरान रह गया। अब्बास की गाड़ी से उसकी पहचान हो चुकी थी। उसके आज चले आईडी कार्ड के साथ में उसकी जलती हुई गाड़ी की फ़ोटो आ रही थी। उसकी डेड बॉडी गाड़ी से निकाली जा रही थी और वो बुरी तरह झुलस चुकी थी। न्यूज़ देखने के बाद फैज़ की आंखों में गुस्सा था। वो अपने मन में बड़बड़ाकर बोला तो आरफ खुराना के राइट हैंड ने उसका बदला ले ही लिया, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? अब्बास तो हमारे पास से एक मिनट के लिए भी नहीं हटा था, फिर उसने कब उसे जान से मारा? एक तो हम किसी से पूछ भी नहीं सकते, इतने लाचार हो गए हैं और गुस्सा आ रहा है हमें। गुस्से में अब्बास का बीपी हाई होने लगा और उसके पास की मशीन से तेज आवाज आने लगी। गार्ड तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लेकर आया। डॉक्टर फैज को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसका गुस्सा बेकाबू हो रहा था। आयु पूरी रात आरफ के पास थी, उसे होश नहीं आया था, फिर भी वो उसके रूम में उसका हाथ पकड़कर बैठी थी। आयु ने गौरवी जी और साक्षी को घर पर भेज दिया था। अयान और आयु ने एक बार भी गौरवी जी को अभी आरफ से नहीं मिलने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो आरफ को इस हाल में नहीं देख पाएंगी। सुबह आयु की आंख खुली तो आरफ उसके सामने बेड पर था, उसे अभी भी होश नहीं आया था। आयु ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसके हाथ को किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर खुराना, अब रोज रोज मुझसे तुम्हें पैम्पर करना नहीं हो पाएगा, जल्दी से होश में आओ, तुम उल्टी सीधी हरकतें करते ही अच्छे लगते हो, ना कि इस तरह शांत लेटे हुए। आयु चेयर से उठी और उसने आरफ का नॉर्मल चेकअप किया। उसका बीपी कंट्रोल में था और पल्स भी सही चल रही थी। ये देखकर आयु ने राहत की सांस ली। बाकी सब ठीक है, लेकिन पता नहीं तुम्हें होश कब आएगा। प्लीज ज्यादा टाइम मत लेना, मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है। तुम्हें डांटना है कि तुम मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए। आयु अकेले अपने आप से बातें कर रही थी। कुछ देर बाद नर्स वहां पर आई और उसने आयु से कहा, डॉक्टर आप रेस्ट करने के लिए घर पर जा सकती हैं, इनके लिए हम यहाँ पर हैं।
नहीं, मैं ठीक हूँ, जब तक आरफ को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आयु ने जवाब दिया। वो वापस आरफ के पास वाली चेयर पर बैठने लगी। तभी उसे अपने आसपास सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। आयु को चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। वो खुद संभालने की कोशिश करती, उससे पहले आयु बेहोश होकर नीचे गिर चुकी थी। पढ़कर समीक्षा कर देना।